उसने एक नई बात सीखी है। उसके पिता जिस समय दफ्तर गए होते हैं तब दोपहर के 12-1 बजे वह अपने घर से निकलकर अपने पहाड़ की चोटी से कुछ दूर पर एक पथ के किनारे काही के बिस्तर पर बैठा रहता है। उसके तपते हुए बदन को उसकी नरम शीतलता अच्छी लगती है और वह इसी प्रतीक्षा में रहता है कि कब शारदा उस पथ से होकर जाए। शारदा उस पथ से स्कूल जाती है और 1 बजे स्कूल में छुट्टी हो जाने पर उसी पथ से अकेले घर लौटती है जहाँ पर वह बैठकर उसकी प्रतीक्षा किया करता है। वहाँ से होकर वह लगभग 2 बजे जाती है। स्कूल से वह 2 मील होगी और शारदा का घर उस स्थान से मील भर से अधिक। वह कभी सोचा करता है इतने दूर चलते चलते शारदा थक जाती होगी, यद्यपि वह स्वयं 20 मील का चक्कर यूं ही काट आता है। शारदा जब वहाँ आती है तब रुकती नहीं, वह भी कुछ बोलता नहीं, चुपचाप वहीं पड़ा उसकी गति को देखा करता है। तब से जब पहले पहल मोड़ से निकलकर उसकी एक थकी हुई बाँह बस्ता संभाले हुए दिखती है, तब वह जबकि उसका श्वेत वसन दुबला शरीर एक बड़े से बबूल वृक्ष के पीछे छिपकर अदृश्य नहीं हो जाता और उसका पदरव उसके पदरव की प्रतिध्वनि तक चुप नहीं हो जाती। पहले वह दूर ही से उसे देखा करता था, स्वयं प्रकट नहीं होता था, पर एक दिन जब वह प्रतीक्षा करते करते सड़क के किनारे पर एक ही जागती तंद्रा में लीन हो गया था तब शारदा ने उसे देखा था और दबे पांव पास आकर किताबों का बस्ता उसकी पीठ पर रख दिया था और वह चौंक उठा, झेप गया था, फिर एकाएक साहस से भर गया था। वह किताबें लेकर उसके साथ हो लिया था और वात्सल्य भाव से पूछ रहा था, तुम इतना बोझ लादे लादे थक नहीं जाती? इसी प्रकार चलते हुए शारदा के घर से कुछ ही दूर यूकेलिप्टस के झुरमुट के पास तक गए थे और एक ही प्रेरणा से रुक गए थे। शारदा ने किताबें ले ली थी, फिर इस क्षणिक मौन को भंग करते हुए एक शरारत भरी हंसी हंसकर कहा था, द बिग सिली बॉय इज काइंड, और भाग गई थी। और वह अपने हाथ को देखता रह गया था क्योंकि उसे भागती हुई शारदा का वस्त्र छू गया था। उस दिन के बाद वह नहीं बोले हैं, किंतु उनका मुख मिलन नृत्य हो जाता है। वह जब उस मोड़ से निकलकर घनी छाया से अंधियारी उस काही के बिस्तर के पास से होकर जाती है तब उधर देखकर मुस्कुरा देती है और चली जाती है। रुकती नहीं, वह भी नहीं बुलाता। जिस दिन से उसके हाथ से शारदा का वस्त्र छू गया है उनमें एक मुक्त समझौता हो गया है कि वे उसकी पुनरावृत्ति का अवसर नहीं आने देंगे, यद्यपि वे शायद स्वयं नहीं जानते कि वे एक दूसरे से बचते हैं, एक शिक्षक सिक्की को छिपाते हैं। शेखर को मालूम है कि आज उसका स्वयं बड़े दिन की छुट्टियों के लिए बंद होगा। आज से 2 सप्ताह के लिए उसे शारदा के दर्शन नहीं होंगे। वह सोच रहा है कि ये 2 सप्ताह कितने लंबे होंगे जिसमें वह उसके दर्शन भी नहीं कर पाएगा, और इस विचार में वह खो गया है। कविता भूल गया है, कल्पना भी भूल गया है, शून्य बैठा है। उसकी आंखें भी आज उसी पथ पर नहीं लगी हुई है, प्रतीक्षा है, किंतु शायद इस भाव ने कि वह दृश्य जरा सी देर में आंखों की ओट हो जाएगा उसके ध्यान को दूसरी ओर प्रेरित कर दिया है। वह आज अपने पुराने सखा परली पहाड़ी के शिखर पर लगे हुए एक्स आकार के वृक्ष की ओर देख रहा है और पुरानी बातें ही सोच रहा है। वह आकर उसके सुन्नत्व को देखकर उसके पास खड़ी हो गई है, पर उसे सुध नहीं है। सुध आती है तब जब वह पूछती है, सीली क्या देख रहे हो? पर सुध में आकर भी वह एक दूरत्व से उत्तर देता है, उस पेड़ को देख रहा हूँ सामने पहाड़ पर। क्यों? यूं ही अच्छा लगता है, मैं वहाँ बहुत जाया करता हूँ, फिर तनिक रुक कर बड़े दिन की छुट्टियों में वहीं जाया करूँगा। जिस कंटकमय पथ पर ना जाने का उसका मुख समझौता है पर उससे बहुत निकट है, वह हटती है, फीके स्वर में कहती है, हमारा स्कूल 5 तारीख को खुलेगा, तुम क्या करोगी छुट्टियों में? पढ़ूंगी। और मैं आज कविता पढ़ता हूँ। शारदा उसकी ओर संदिग्ध दृष्टि से देखती है, कहीं फिर उसी पथ की ओर तो गति नहीं है, और कहती है, मुझे तो टेनिसन की कविता अच्छी लगती है। वह उसे कहने को है, मैं टासो का अनुवाद पढ़ रहा हूँ, पर उसकी एक कविता के स्मरण करके शर्मा कर चुप रहता है। वह जाती है, वह कहता है गुड बाय अर्थात विदा, और फिर टासो की कविता के स्मरण करके मन ही में ऑन लॉन्ग गुड बाय। उसके कोई उत्तर दिया या नहीं, वह नहीं सुन पाया। उसने घर की किताबें टटोल टटोल कर टेनिसन का एक संग्रह पाया है, मॉड और अन्य कविताएं। टॉस टोसा कहाँ पड़ा है उसे नहीं याद। वह इसी पुस्तक को लेकर अपने एस आकार वाले वृक्ष के नीचे जाकर बैठता है और विमनसक सा होकर पढ़ता है। उसकी आंखें पढ़ती है, कान किसी शब्द की प्रतीक्षा में रहते हैं और मस्तिष्क सोचता है वह आएगी। उसने उस आने के लिए नहीं कहा, ना शारदा ने ही कोई ऐसी इच्छा प्रकट की थी, पर वह 3 दिन से ही सोचकर प्रतीक्षा में है कि शायद वह आए, क्योंकि उसने उसे या जो बता दिया है कि वह यहीं 3 दिन व्यतीत करेगा, यानी यहीं प्रतीक्षा करेगा। क्या वह इतना भी नहीं समझ सकेगी? इसी विचार में उसकी आंखों का पड़ा हुआ भी उसके मन में समाता जा रहा है, और वह चौंक कर देखता है कि उसी का एक क्षण गुनगुना रहा है जिसे उसकी बुद्धि ने नहीं पहचाना किंतु उसकी मन शक्ति ने परख लिया है। अंग्रेजी की 6 लाइन, कम इन टू द गार्डन मोड फॉर द ब्लैक बैट नाइट हैज फ्लोन एंड द वुड वाइन स्पाइसेस आर वॉफ्टेड अब्रॉड एंड द मस्क ऑफ द रोजेस ब्राउन। कम इन टू द गार्डन मोड आई एम हेयर एट द गेट एलोन। अर्थात मोड उद्यान में आ, क्योंकि रात का सांवड़ा पेखड़ू उड़ गया है और वन चमेली की गंध फैल गई है, गुलाब का पराग उड़ रहा है। उद्यान में आ मॉड, मैं द्वार पर प्रतीक्षा में अकेला खड़ा हूँ। और वह आती है उतावली सी, किंतु उसे बैठा देखकर ठिठकती है, रुकती है और विस्मय दिखाकर कहती है, अरे तुम यहाँ कहाँ? और वे घूमने लगते हैं, इधर उधर भटकते हैं और निरर्थक बातें करते हैं, यद्यपि एक दूसरे की बात नहीं सुनते। इसी में प्रश्न है कि दोनों साथ हैं। वे उस चोटी से उतरकर साथ के एक शिखर पर चढ़ते हैं, तब एकाएक ना जाने कैसे उसे विचार आता है, शारदा का नाम भी एस से आरंभ होता है, और वह घूम कर देखता है, उसका सखा एस वृक्ष वहाँ से आधा ही दिखता है। वह सहसा कहता है, एस फॉर शारदा, क्या उस पहाड़ पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? देखूँ कहाँ? वह देखो, दिखता है एस लिखा है, नहीं तो एस तो नहीं है, यहाँ से ठीक नहीं दिखता। ठहरो, मैं पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ। उसने पहले बहुत बार देखा हुआ है, और यदि वह पेड़ पर चढ़कर देख भी लेगा तो शारदा को दिखेगा नहीं। ये सब तर्क उसके ध्यान में नहीं आते। वही संधि के अहंकार में वह एक ही बात सोचता है कि उसके कथन की प्रामाणिकता स्वयं उनके लिए अकट्य होनी चाहिए। वह जल्दी जल्दी पास के एक देवदारू के वृक्ष पर चढ़ने लगता है। उस वृक्ष पर चढ़ना आसान नहीं है, उसका बदन छिल रहा है, पर वह रुकता नहीं, कुछ सोचता भी नहीं। काफ़ी ऊपर चढ़कर वह देखता है, एस स्पष्ट दिख रहा है। विजय की हुंकार की तरह वह कहता है, वह है तो लो अपने परिश्रम का पुरस्कार। वह कहती है, मैं कैसे देख सकती हूँ सिली? पता नहीं कैसे शारदा की डांट से या अपने सीलीपन से, वृक्ष के दोष से या भाग्य की वामता से, वह उतरते उतरते फिसल कर गिरता है धर्म अर्थात धम्म, और हंसने को उसके ऊपर गिरती है देवदारू की कुछ फुनगियाँ। वह पीड़ा की अनुभूति से पहले ही सिर उठाकर देखता है, शारदा ने देखा तो नहीं, और वह दोनों हाथों से पेट पकड़ कर बड़े जोर से हंस रही है। उसे इस बात का भी ध्यान नहीं है कि उसका मुंह छिल गया है कि उसके चोट आई है कि बाई एड़ी में मोच आ गई है। वह उठकर पागल सा तीव्र गति से एक ओर चल देता है। शारदा हंसी भूलकर पूछती है, चोट तो नहीं लगी? तो उत्तर नहीं देता, इधर आओ देखूँ तो नहीं आऊँगा। नहीं आओगे? नहीं आऊँगा। और चलता जा रहा है। मेरे पास नहीं आओगे? नहीं, कभी नहीं, अनंत काल तक नहीं। और चलता जा रहा है, पर पहले से भी जरा धीमी चाल से। वह फिर हंसती है, एक कांपती हंसी, किंतु हंसी तो है। किंतु और उसकी गति भी तीव्र हो जाती है, यद्यपि पीड़ा बहुत होने लगा है। संध्या 4 दिन से शेखर वहाँ नहीं जा सका है। उसका पैर बहुत दुख रहा है। पैर आज पर वह आज उसने निश्चय किया है, अवश्य वहाँ जाएगा। मुठिया घूंट घूंट कर, दांत पीस पीस कर निश्चय किया है। वह घूमने के बहाने घर से निकला है। एक छोटी कुल्हाड़ी उसने अपने बड़े कोट में छिपा ली है और घर से बाहर तक किसी ना किसी तरह बिना लंगड़ाए चला आया है। अब वह स्थिर दृष्टि से उस वृक्ष की ओर देखता है और काफी लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है। वह एक बड़ा भयंकर निश्चय करना करके निकला है। उसे क्रोध ना जाने किस पर आ रहा है, किंतु उसकी इस प्रतिहिंसा वृत्ति ने क्या निश्चय किया है या वह जानता है। वह पेड़ के पास पहुंच गया है। इतने समीप से उसका ऐसा आकार स्पष्ट नहीं दिखता। पत्तियां और शाखें अलग-अलग नजर आती है। उसने कोट उतार दिया, जूते उतार दिए, एक हाथ में कुल्हाड़ी थामे पेड़ पर चढ़ गया। एक लंबी सांस लेकर और जोर से दांत भींचकर उसने अपना कार्य आरंभ कर दिया। वह उस वृक्ष को अपंग कर रहा है, उसकी शाखें काट रहा है, शारदा के नाम से उसकी पर्यायता को मिटा रहा है। अब वह बहुत सी शाखें काट चुकता है। तब वह उतरता है, कपड़े पहनता है, कुल्हाड़ी छिपाता है और शराबी की तरह लड़खड़ाता हुआ बिना फिर कर देखे जल्दी जल्दी घर की ओर चल देता है। घर से कुछ दूर बाहर के फाटक के पास उसका उन्माद उतर जाता है। उसके मन पर से साप का बोझ उठ जाता है। वह रुक कर उस शिखर की ओर देखता है। उसकी आंखें मानो उसी से आंख बचाकर एक चिन्ह को ढूंढती है और उसके, शारदा के और उन दोनों के एकत्व कि उस चिन्ह का आकार एस से बदल कर एक अधूरे सिफर सा, एक औंधे रिक्त प्याले सा खड़ा आकाश को देख रहा है। और वह एक बड़ी सी सिसकी लेकर अपने अथाह आंसुओं को पी कर कहता है, शारदा मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। वह संधि का एक क्षण असीम जितना विस्तीर्ण है और असीम एक क्षण भर सा छोटा। जिस दिन शेखर ने निश्चय किया था कि अब कभी शारदा से मिलने नहीं जाएगा, उसके सप्ते भर बाद ही वह अपने स्थान पर बैठा था। पर वह नहीं आई। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, सप्ताह, 3 सप्ताह, अब 2 महीने हो चले थे और वह नहीं आई थी। इस बीच में बहुत कुछ हो गया था। पहले तो यह निश्चय हुआ था शेखर मैट्रिक की परीक्षा दे और कॉलेज जाने की तैयारी करे। इसके लिए वह कुछ ही दिन में उत्तर जाने वाला था। पर पढ़ाई और भावी परिवर्तन की चिंता से बढ़कर भी कुछ उसके जीवन में हुआ था, कुछ जो कहीं अधिक व्यक्तिगत और गहरा था। उस पेड़ को काट देने के बाद शेखर की मनोवृत्ति बदल गई थी। वह संभल गया था, समझ गया था। वह पहले की सी उलझन, जिसमें गृहिणी के सुख के साथ बड़ी कन्या की वाणी और वाणी की झंकार और शारदा के शब्द उसके मन क्षेत्र आते थे, अब नहीं थे। उसने अपने भीतर के उपद्रव को पढ़ लिया था, अपने भीतर छिपे सत्य को प्रत्यक्ष करके स्वीकार कर लिया था कि शारदा को प्यार करता है। अब उसे वैसे मिश्रित स्वप्न नहीं आते थे। वे सारे शरीर में फैलने वाले अवर्णनीय अशांति उसे नहीं सताती थी। अशांति का प्रकार तो अब भी वैसा ही अखत, घिंचाव भरा और शरीर व्यापी था, पर अब वह अकारण और असमय नहीं आती थी। अब शेखर जानता था कि उसका अभिन्न संबंध शारदा से और शारदा के विचार से है। और अब वह अपने जीवन की एक स्वरता से उकता कर पुराण संसार में अपने को भुला देने की चेष्टा नहीं करता था। ग्रीक पुराण में से नरगिस और प्रतिध्वनि या हीरो और लिएंडर या डेपनी और एपोलो या ईरोस और साइकी गथाएं नहीं पढ़ता था। अब उसने टासो और टेनिसन तक को छोड़ दिया था। अब तो जब भी एकांत पाता वह ग्रामोफोन पर वायलिन का रिकॉर्ड सुना करता था या कभी रात्रि के अत्यंत एकांत में शेषना की बजाय हुई वीणा का एक रिकॉर्ड सुनता हुआ एक तुलना किया करता जिसका निर्णय सदा ही शेषना के विपक्ष में होता। जब घर में उसे ऐसे अवसर नहीं प्राप्त होते तब वह उस पवित्र स्थान पर जाकर रवि ठाकुर की गीतांजलि पढ़ा करता। अब इस रहस्यवादी कविता में उसे एक ऐसा रस मिलता जो उसने कभी किसी वस्तु में नहीं पाया था। एक पद पढ़ते ही उसका सारा पिछला जीवन मानो मैल की तरह धुलकर उससे अलग हो गया और उसे अनुभव होता कि वह किसी देवता की अर्चना के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होकर खड़ा है। अंग्रेजी की लाइन, आई शेल एवर ट्राई टू कीप माई बॉडी प्योर नोइंग दैट द लिविंग टच इज अपॉन ऑल माई लिम्स, अर्थात तेरा जीवित स्पर्श मेरे अंग अंग पर है, या जानता हुआ मैं अपनी देह की रक्षा पवित्र रखूंगा। और कभी एक उल्लास उसके रक्त में नाचने लगता। अंग्रेजी की एक लाइन, ओ दी वेव्स दी स्काई डिवोरिंग वेव्स ग्लेस्टर्निंग विथ लाइट डांसिंग विथ लाइफ दी वेव्स ऑफ एडिंग जॉय, अर्थात हिलोल गगनचुंबी हिलोल आलोक से दीप्त जीवन से नाचती हुई आनंद से विभोर। डेढ़ महीने की प्रतीक्षा के बाद भी वह नहीं आई है और अपनी उग्र उत्कंठा के लिए वे भी शेखर वहीं पर प्रतीक्षा करता है। उसके घर की ओर नहीं जाता, उसके स्कूल के पद पर भी नहीं। आज शेखर से प्रतीक्षा नहीं सही जाती। दो चार दिन में वह परीक्षा के लिए उत्तर जाने वाला है, फिर भी उसे विचार नहीं आता कि वह स्वयं जाकर शारदा से मिल आए या देख ही आए। वह आएगी क्यों नहीं आएगी? क्या शेखर ने एक बार क्रोध में कह दिया कि नहीं आऊँगा इसलिए इतने दिन क्यों नहीं आई? उस समय शेखर कौन बताता है कि उसके दिन दूसरे दिन भी आई थी, तीसरे दिन भी और चौथे दिन भी। निराश होकर बहुत देर रोकर और एस वाले वृक्ष के पत्ते लेकर चली गई थी बिना यह सोचे कि फिर कब आएगी। शेखर रवि ठाकुर का वही पद पढ़ रहा था और उसे किसी वृक्ष को कभी नीचे बिखरे पत्तियों को और कभी आकाश को सुना रहा था। अंग्रेजी की लाइन है, आई सेल एवर ट्राई टू कीप माई बॉडी प्योर नोइंग डेट थी लाइविंग टच इज अपॉन ऑल माई लिम्स, अर्थात जिस दिन सतदल अर्थात तेरे जीवित स्पर्श मेरे अंग अंग पर हैं, या जानता हुआ मैं अपनी देह की रक्षा पवित्र रखूंगा। लंबे लंबे वृक्षों की वर्णहीन सी शाखाओं की उलझी हुई छाया लाल नसवारी और पीले रंगों के झरे हुए पत्तों पर अलसाई सूर्य किरणों की सनिगत विचलन उनमें जान डाल देने वाले पृष्ठभूमि के देवदारु वृक्षों की गाढ़ा मुंगिया रंग ये सब टोड़ा जाति के शब्दहीन संगीत के भांति एक राग बनकर उसकी चेतना में समाये जा रहे थे। वह आई मुरझाई हुई सी खोई हुई सी और एकाएक अविश्वास से खिल उठी, फिर अविश्वास तो बुझ गया वह खिली रह गई। वह शेखर के पास बैठ गई, दोनों चुप रह गए। शेखर कुछ कहना चाहता था लेकिन जिसे अपनी भाषा में भी नहीं कहा जा सकता, जिसकी व्यंजना के लिए मौन भी एक रूखा उपाय है, उसे कैसे एक विदेशी भाषा में कहा जाए। शेखर उसे गीतांजलि सुनाने लगा। वह वैसे ही खोई हुई सी सुनती रही। ऑन द डे द लोटस ब्लूम्ड अलास माई माइंड वास्ट्रिंग एंड आई न्यू इट नॉट, अर्थात जिस दिन सतदल खिला उस दिन मैं अनमना था, मैंने नहीं जाना। तब धीमे आस्वर आसुपुट स्वर में टूटे वाक्यों में शारदा उसे बताने लगी कि कैसे वह 3 दिन तक उसे देखने आती रही और निराश हुई, और शेखर के हृदय में जो कृतज्ञता भर गई उसे छिपाता हुआ वह चुपचाप गंभीर बना बैठा रहा। पर वही संधि के दिनों में ऐसे बैठे हुए या गंभीरता, अब तक वे दोनों उठे हुए हाथ में किताब लिए हुए, शेखर कभी इधर कभी उधर शारदा के पकड़ने के लिए भागने लगा। वह चंचला पकड़ में ना आती। दौड़ते दौड़ते वह अपने परिचित संकेत स्थल से बहुत दूर निकल गए। एक दूसरे ही पहाड़ी के आंचल में, जिसके नीचे झील थी और जिसके ऊपर फैली हुई घास में स्थान स्थान पर सुदर्शन जैसे आकार की लिली खिल रही थी, अधिकांश बिल्कुल श्वेत, किंतु कोई 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 ऐसी जिसकी पंखुड़ियों में एक आड़ी लाल रेखा घिंची हुई होती है। शारदा हाँपती हुई घास में लेट गई। शेखर उसके पास ही खड़ा हो गया, लेकिन इतने व्यायाम से उसके शरीर की तृप्ति नहीं हुई, उसमें संचित हो रही उत्तेजना बिखरी नहीं। शेखर किताब घास में फेंक कर जल्दी जल्दी फूल तोड़कर समेटने लगा। जब जब उसके हाथ में भर जाते, वह उन्हें ले जाकर शारदा के आगे डाल देता और फिर समेटने लगता। वहाँ पड़े पड़े शारदा को आसपास जहाँ तक दिख सकता था वहीं के कुछ फूल शेखर ने तोड़ लिए थे और उन्हें शारदा के सब और शारदा के ऊपर डाल दिया था। वह हंसकर उठ बैठी थी और एक हाथ पर अपने शरीर का बोझ डाले, दूसरे को फूलों में दबाए मुस्कुराए हुए बैठी कुछ सोच रही थी। शेखर उससे कुछ दूर जाकर बैठ गया, फिर घास में लेट गया और दोनों उस निर्वरता में अपने अपने रहस्य दोहराने लगा। एक नशा सा शेखर पर छा गया, उसके शरीर में फैल गया, उसकी सांस तीव्र गति से चलने लगी, उसका शरीर तप गया सा, और उसे लगने लगा कि उसकी छाती के भीतर कहीं शीशा उबल रहा है। वह औंधा हो गया, अपने शरीर की सारी शक्ति से धरती के चिपटने लगा। कम सा अपने दोनों गाल और माथा उस गीली और शीतल घास पर दबाने लगा कि उनका ज्वर कुछ कम हो जाए। वह पर्याप्त नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उसका रक्त मांगता है कुछ और उत्कट अनुभूति। वह अपने सारे मनोबल से पृथ्वी के आलिंगन को धृत करने का विचार करता जाता है, पर उठ भी खड़ा होता है। शारदा के पीछे जाकर झपट कर दोनों हाथों से उसकी आंखें मूंद लेता है। वह चौंक कर चुप रहती है। शेखर और भी जोर से उसकी आंखें दबा लेता है। शारदा का शरीर जलता क्यों है, कांपता क्यों है? एक दूरधर्म में प्रेरणा से शेखर झुकता है, अपनी टोड़ी शारदा के सिर पर टिका देता है, उसके रूखे केस को सूंघता है, फिर अपनी नाक उन केसों में दबा देता है और दो तीन चार पांच बहुत लंबी सांसें खींचता है। वह नए मधुमास में नीम के बोर सा सौरभ, बहुत मीठी पुरानी शराब की फेन सा वह शेखर के नथुनों में प्रविष्ट होकर उसके मस्तिष्क में छा जाता है, और जैसे किसी पागल को बहुत सी शराब पिला दी जाए वैसे ही दशा शेखर को हो जाती है, दो उन्मादों से उन्मत्त। वह बहुत अधिक कांप रही है और जितना ही कांपती है शेखर उतना ही अधिक आँखों को दबाता जाता है, मानो अपने दो हाथों को अपनी थोड़ी के दबाव से उसका कंपन शांत कर जाए, उस छोटे से सुंदर सिर को कुचल डालेगा। वह एक हाथ से शेखर के हाथ हटाने का प्रयत्न करती है, पर कहाँ, या क्या है, कंपन या सिसकी? उसकी सांस बड़े 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 टूटे से झोंकों में घिंचती है, और उनमें क्या है, हुक हुक जैसे हिचकी। शेखर एकदम उसे छोड़ देता है, उसके पास ही फूलों के ढेर पर ही बैठ जाता है और एकटक उसके मुख की ओर देखता जाता है। फिर कल्प बीत जाते हैं, वह हिचकी सिसकी बंद हो जाती है और शारदा बड़ी बड़ी आंसू भरी आंखें उसकी ओर फेर कर एक गंभीर विषाद की मुस्कुराहट से, एक कोमल उलहने भरी आवाज़ से कहती है, तुमने सब फूल कुचल डाले। एक बहुत लंबे क्षण तक उसकी आंखें मिली रहती है और उसी क्षण में वह उठ खड़ी होती है। शेखर ना उसकी बात को उत्तर दे पाता है, ना फूलों पर उठ ही पाता है। वह धीरे धीरे मुड़ कर चढ़ने लगती है। शेखर उसे रोकने को उंगली भी नहीं उठा पाता, वह विदा भी नहीं मांगती। पर शेखर की जिन्हा में उसे इतना पूछने की शक्ति भी नहीं है कि तुम कहाँ जा रही हो। दूसरे दिन समाचार आया कि परीक्षा की तारीख बदल गई है और शेखर को तत्काल जाना होगा। एक ओर घर के कुचल देने वाले वातावरण से निकाल जाने की उत्सुकता और दूसरी ओर शारदा के विचार से उत्पन्न उद्वेग दोनों को मन में छिपाए ही तीसरे दिन शेखर लाहौर की ओर चल पड़ा। किवाड़ खटखटा कर शेखर अंधकार में खड़ा प्रतीक्षा करने लगा कि कोई आकर द्वार खोले। थोड़ी देर बाद उसे दिखा कि भीतर से एक दिए का प्रकाश द्वार की ओर आ रहा है। फिर किवाड़ चढ़ाए और सांकल खटकी, द्वार खुल गया। एक लड़की दिया हाथ में लिए एक ओर हटकर खड़ी थी। शेखर ने आंख भर उसकी ओर देखा और आगे बढ़ गया। थोड़ी ही आगे बढ़कर उसे लगा वह उस लड़की को पहचानता है। उसने रुककर बिना लौटे झेपे हुए स्वर में कहा, शशि। शशि ने दिए वाले हाथ से के साथ दूसरा हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम। शेखर को एकाएक वह लोटे की लड़ाई का दृश्य याद आ गया जो उनका एकमात्र परिचय था। वह जल्दी से आगे बढ़कर ऊपर चला गया। शशि द्वार पर खड़ी रही। शेखर ने मौसी विधावती की ओर उसके पति देवनाथ को प्रणाम किया। अपना कमरा देखकर उसमें सामान इत्यादि खोला, किताबें सजाकर मेज पर रखी और पढ़ने बैठ गया। मौसी ने आकर कहा, कुछ आराम तो करते, पढ़ाई तो हो ही जाएगी। शेखर ने शर्माते हुए कहा, दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, मैंने कुछ पढ़ा नहीं। मौसी चली गई। शेखर किताब सामने खोलकर सोचने लगा, उस दिन शारदा को क्या हुआ था, वह क्यों रोई थी। तभी नीचे से किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आई। शेखर चौंका, फिर किताब उठाकर जोर जोर से पढ़ने लगा। शशि कितना हंसती है, शारदा और तरह हंसती थी। उस दिन जब परीक्षा की बात हुई थी, परीक्षा पढ़ाई ज्योमेट्री की किताब, शशि उससे इतनी छोटी तो नहीं है, तब क्यों प्रणाम करती है। उसके माथे पर लोहे का चोट के निशान होगा। शारदा इस समय क्या करती होगी, शायद पढ़ती होगी। पढ़ाई ज्योमेट्री की किताब, परीक्षा। शशि ने आकर कहा, भाई जी, माँ रोटी खाने को बुलाती है। शेखर सोचने लगा, यदि शशि उसे भाई जी ना कहकर शेखर कहे तो हर्ज है, वह उससे बहुत बड़ा नहीं। प्रकट बोला, चलिए मैं अभी आया। उसे नहीं समझ आया कि शशि किस प्रसंग में कह रही है, मैं आपसे बड़ी थोड़ी ही हूँ। शशि चली गई। शेखर फिर ज्योमेट्री की किताब की ओर देखने लगा। शेखर दिन में 16-16 घंटे पढ़ता था और तब उठता था जबकि उसका मस्तिष्क बिल्कुल थक जाता था, काम से जवाब दे जाता था। फिर भी चारपाई पर लेटते ही उसका मस्तिष्क इतने विचारों से, चित्रों से भर जाता था, इतनी जिज्ञासाएं उसके मन में जाग उठती थी। उसके पड़ोस में एक लड़की रहती थी, वह कुछ पागल सी, उनकी आंखें भी भयंगी थी और आसपास के लड़के उसे आते जाते देखते तो एक स्वर में से पुकार कर उठते, सुमित्री कानी तितरी। शेखर या सुनकर या उसे देखकर एकाएक हंस उठता था, पर जाने क्यों वह और किसी की परवाह नहीं करती थी। शेखर को हंसता देखकर उसकी आंखों में पीड़ा के आंसू आ जाते थे। एक दो बार यह देखकर शेखर ने हंसना छोड़ दिया। तब सावित्री उसे कहीं बैठा या पड़ता देखकर उसके पास चली आती थी और चुपचाप खड़ी रहती थी। कोई और आ जाता तो भाग जाती, नहीं तो लगातार घंटा भर भी खड़ी रहती। शेखर उसे कभी बुलाता भी नहीं, वह भी कभी नहीं बोलती, केवल शेखर को पढ़ती देखती रहती। धीरे धीरे शेखर उसके वहाँ होने का अभ्यस्त हो गया, बल्कि उसकी प्रतीक्षा भी करने लगा। पढ़ते समय यदि वह नहीं होती, शेखर का ध्यान पढ़ने में ना लगता। वह उसकी प्रतीक्षा करता और सोचता रहता, वह क्यों नहीं आई अभी तक। बीच बीच में कभी उसे शारदा का ध्यान आ जाता, वह अपने को कोसने लगता, क्यों मैं और किसी की कल्पना भी करता हूँ। मैं शारदा को प्यार करता हूँ और दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं होना चाहिए। तब वह दांत पीस कर अपने को पढ़ाई में लगाने की चेष्टा करता था, पढ़ाई में और सभी को भुला देने की, ताकि शारदा के अतिरिक्त कोई उसके भीतर कहीं स्थान ना पाए। शशि दोनों समय उसकी रोटी लाती, सब लोग चौके में खाते, वह कमरे में खाता था और रोटी खिलाने का काम शशि के सिपुर्द किया करता था। शशि उससे कभी पूछती नहीं कि खाना ले आऊं। जब समय हो जाता या सब वह उचित समझती, तब खाना लेकर शेखर की मेज पर से किताबें एक ओर हटा कर रख देती और कुछ दूर पर खड़ी रहती। शेखर कोशिश करता कि उसकी उपस्थिति को भूल जाए, पढ़ता रहे, पर कुछ ही देर बाद किताब बंद करके चुपचाप खाने लगता। जो चीज़ कम हो जाती शशि स्वयं ला देती, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसके इनकार करने का भी कुछ असर नहीं होता। शशि को चीज़ कितनी देनी होती दे जाती, वह चाहे लाख रोकता रहे, पर बोलती वह कभी नहीं थी। कभी शेखर बात करने के लिए कह देता, बहन जी अमुक चीज़ ला दीजिए, तो वह चुपचाप ही आज्ञा का पालन कर देती, हाँ ना कभी ना करती। या कभी शेखर की पढ़ाई पर विघ्न डालने लगा, वह इसी को लेकर सोचता रहता कि क्यों, कब, कैसे, क्या, और भूल जाता कि उससे पढ़ाई करनी है। एक दिन तंग आकर उसने मौसी के पास नालिश की, मौसी बहन हमसे बोलती नहीं है, इन्हें कहिए बोला करे। मौसी ने हंस दिया, लेकिन उस दिन शाम को जब शेखर खाना खा रहा था, तब शशि ने कहा, मैंने आपकी शिकायत की है, और बाहर चली गई। उसके बाद शेखर को स्वयं दाल रोटी इत्यादि मांगनी पड़ी। दूसरे दिन उसने कहा, मैं भी चौके में भी भोजन करूंगा। वह चौके में गया तो मौसी ने कहा, शेखर शशि कहती है कि तुम उसे बहन जी मत कहा करो, वह तुमसे छोटी है। लेकिन मुझसे तो वह बोलती ही नहीं, इसलिए नहीं बोलती, कहकर मौसी हंसने लगी। शेखर बोला, तो हम पहले ही बता देती। लेकिन उसके बाद उसे जब भी मौका मिलता, वह शशि के पास से जाते हुए ख्वामा खा कह देती बहन जी, और वह भी कभी नहीं बोलती। इस प्रकार जब शेखर सावित्री की प्रतीक्षा ना कर रहा होता, तब इस ताक में होता कि शशि उसके पास आए और वह उसे चिढ़ा सके। उसे नहीं जान पड़ता कि पढ़ाई के समय का कितना अंश पढ़ने में बीतता है और कितना इन प्रतीक्षाओं में। और कभी शारदा का ध्यान आ जाता तो वह अनुताप और क्रोध से जल उठता कि क्यों उसने अपने समय का एक क्षण भी शारदा के अतिरिक्त किसी को दिया है। इसी प्रकार उसकी पढ़ाई होती रही और प्रतीक्षा भी हो गई। शेखर जब लौटने लगा, तब उसने सब विदा मांगी, केवल शशि से नहीं मांगी। मांग ही नहीं सका, क्योंकि जब ही उसने आरंभ किया बहन जी, तब भी शशि वहाँ से चली गई। पर स्टेशन पर वहाँ उसे छोड़ने आई, जब वह गाड़ी पर बैठ गया, सब लोगों को प्रणाम नमस्कार कर चुका, तब शशि के पास आकर हाथों की उंगलियाँ मात्र जोड़कर अधूरा सा प्रणाम करते हुए कहा, अब भी आप बहन जी कहेंगे। शेखर जैसे भर आया, उसने जल्दी से कहा, शशि। गाड़ी चल पड़ी। शेखर ने देखा शशि के मुख पर मधुर सी मुस्कुराहट है, तब उसने एकाएक पुकार कर कहा, बहन जी। उतनी दूर से वह शशि की आकृति नहीं देख सका, यद्यपि शशि ने उसकी आवाज़ सुनी जरूर। लेकिन जब गाड़ी स्टेशन से निकल गई, तब शेखर को सावित्री, शशि, मौसी, पढ़ाई, परीक्षाफल सब कुछ भूल गया। एक ही बात उसके मन में रह गई कि वह दक्षिण लौट रहा है और दक्षिण में शारदा है। यह बात उसके शरीर, मस्तिष्क, मन और आत्मा में इस प्रकार छा गई कि उसके भौतिक संसार का उसे ज्ञान ही ना रहा। और घर पहुंचकर भी जब उसने जाना कि एक तार इस आशय का आया है कि उसका बड़ा भाई ईश्वर कॉलेज से लापता हो गया है, तब इस समाचार की कोई विशेष छाप उस पर नहीं पड़ सकी। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके माता पिता इतने उद्भ्रांत से क्यों हैं और उसके छोटे भाई क्यों दबे से चुपके से रहते हैं। उसके मानो पैर ही पृथ्वी पर नहीं पड़ते। वह धरती से कोई खास ऊंचाई पर चल रहा था जिससे संसार की कुल शक्तियां मिलकर भी उसे नीचे नहीं खींच सकती। उसका शरीर मानो अभी तक उसके हाथों के दबाव के नीचे का कंपन अनुभव कर रहा था। उसकी घ्राणेन्द्रियाँ मानो अभी तक नीम के एक नए बोर के सुगंध से उसे बेहोश किए जा रही थी। किसी तरह उसने वह पहला दिन घर में बिताया। दूसरे दिन सवेरे ही उठकर घूमने निकला। वह वृक्ष पर गया। वहाँ वह नहीं थी। कोई कारण भी नहीं था कि हो। तब वह अपने पहाड़ की चोटी पर गया। वहाँ से सामने यूकेलिप्टस के पेड़ों का वह कुंज तो दिखता था, लेकिन उसके ऊपर से गरुड़ नीर की चिमनी से उठे हुए धुएं का स्तंभ नहीं दिख रहा था। शेखर उतर कर भागता हुआ कुंज की ओर चला। गरुड़ नीर के पास पहुंचकर उसने देखा, वहाँ बड़ी घनी शांति है। कहीं कोई नहीं है। घर में ताला लगा हुआ है। शीशे में झांक कर देखा, कहीं सामान इत्यादि भी नहीं पड़ा है। मकान बिल्कुल खाली है। वहाँ भी वह नहीं थी। शेखर सीढ़ियों पर बैठ गया। जब वह उठा तब वह वह संधि का ज्वार समाप्त हो गया था। रसोई के साथ वाले कमरे में अकेला बैठा हुआ शेखर भोजन कर रहा था। रसोई घर में माँ बैठी रोटी कर रही थी। शेखर के हाथ और मुंह तो खाने की क्रिया में सहयोगी है, पर उसका मन वहाँ नहीं है। वह कहीं भी है उसका निश्चय नहीं है। रोटी खत्म होती है तो शेखर को ध्यान नहीं रहता। माँ रसोई से आवाज़ देती है, रोटी ले आओ, तो जाकर ले आता है। हाथ में गुलाबी रंग के दो तीन कागज लेकर शेखर के पिता शेखर के पास से होकर रसोई घर में चले गए। उनकी आकृति से शेखर को जान पड़ा कि कोई असाधारण समाचार है और रोटी चबाना भूलकर अनमनासा बैठकर सुनने लगा कि क्या बात होती है। ईश्वर दत्त का पता मिला है। वह मुंबई में है। वहाँ पुलिस में भर्ती होने की कोशिश कर रहा है। वहाँ उसने कॉलेज का पता तो दिया है, पर पिता का नाम झूठ बताया था। कॉलेज में कुछ जांच हुई थी, वहीं से तार आया है। थोड़ी दिन मौन रहा रहता है। शेखर समझता है बात समाप्त हो गई, पर फिर माँ भी बोलती है, अब की बार वह लौट कर आए तो उसकी शादी कर दो। पिता ऊँ से, शादी से क्या होगा? फिर थोड़ा सा चुप, फिर कहती है ऐसे जैसे किसी और ही विषय की बात हो। अजीब लड़का है, भला ऐसे का कोई विश्वास करे? पिता एक धीमा, कुछ अनिश्चित, कुछ विचार भरा एक अक्षर कहते हैं, हूँ। फिर एक मौन अभिप्राय से भरा हुआ। फिर माँ कहती है, और सच पूछो तो। एकाएक उनका स्वर बहुत धीमा हो जाता है, पर इतना नहीं कि शेखर ना सुन सके। सच पूछो तो मुझे इसका भी विश्वास नहीं है। इसका शेखर का मुंह खुला रह जाता है। आंखें फट सी जाती है। दुनिया भूल जाती है। वह कहीं बहुत ऊपर से गिरता है। एक धधकती हुई नेत्रहीन अनुभूति सी दीवार को भेद कर वह देखता है। माँ की मुख मुद्रा, उनकी आंखों का एकाएक थम गया सा भाव और शेखर की ओर इंगित किया हुआ अंगूठा। इसका शेखर ने उसे देखा नहीं। एक नेत्रहीन, कर्णहीन, मनहीन अनुभूति से उसे सोखा सा गया विष को। इसका वह लड़खड़ाता सा उठा, उस कमरे से बाहर चल दिया। हाथ धोने को रसोई घर की ओर नहीं गया। पीछे माँ ने पूछा, रोटी लेगा? और उत्तर ना पाकर झुंझला कर कहा, या मुआ, मुझे बहुत सताता है, इसके ढंग समझ ही नहीं आते। पिता मुआ शब्द के प्रयोग का छिन्न विरोध करने लगे। यह सब शेखर ने मानो दृतिक चेतना से सुना। उसके बाद उसके भीतर बाहर सर्वत्र एक अंधकार सा छा गया। इसका एक शब्द ने उसे जड़ता को तोड़ दिया जो शारदा के जाने से शेखर पर कब्जा कर बैठी थी। पर उसे कहाँ ले जा सक फेंकेगा, कहाँ गिरा दिया? उसके भीतर, उसके जीवन में क्या कुछ तोड़ दिया? जिधर वह देखता, एक कुछ अपना अंगूठी उसकी और दिखा कर कहता, इसका इसका और इसका। रात हो गई। शेखर उस समय से अपने कमरे में बैठा है, बिल्कुल पाषाण सा। उसने कुछ खाया पिया नहीं कि इसके लिए गानियाँ सुनी जो उसे छू नहीं गई, यद्यपि वह बहुत जली कटी और आंसुओं का भार लिए हुए थी। पिता डांट डपट कर चले गए। माँ भी कह सुनकर रो पीट कर झींक कर चुप हो गई। सब सो गए। शेखर ने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए और बत्ती बुझाकर बिस्तर पर बैठा सुलगने लगा। उसके भीतर एक अथक भाव, जो पता नहीं क्रोध का या ग्लानि का या घृणा का या क्या, इतना उग्र था कि विचारों में नहीं बंधता था। उसका मस्तिष्क नहीं, समूचा शरीर ही एक साथ खींच रहा था और कुचला जा रहा था। इस भावना की अनुभूति ही इतनी व्यापनी और स्तिमित कर देने वाली थी कि उसने किसी प्रकार की भी इच्छा के लिए स्थान नहीं छोड़ा। शेखर की संपूर्णता ही अवसाद का एक फफोला बनी हुई थी जो फूट गया। शेखर अंधकार में ही उठा और मेज के खाने का ताला खोलकर एक कॉपी निकालकर अंधेरे में ही लिखने बैठ गया। पता नहीं कितने देर तक, पता नहीं क्या क्या। वह कॉपी शेखर की डायरी थी, उस वर्ष में उस पर किए गए अन्यायों और अत्याचारों का इतिहास। कोष्ठ में, क्योंकि उसे इतना सुरक्षित रखने पर भी शारदा की बात उसमें लिखने का साहस उसे नहीं हुआ। कोष्ठ बंद। और 2-3 महीनों में कितना अत्याचार किया जा सकता है। जब रात समाप्त हुई तब शेखर बहुत दूर से लिखना समाप्त कर चुका था और अंधेरे को फाड़ कर देखता रहा था। सोया नहीं था और लिखे हुए में से एक वाक्य घूम घूम कर मेरुभूमि में गर्म आंधी की तरह हु हु करता हुआ उसके सिर पर गूंज रहा था। अंग्रेजी की लाइन, बेटर टू बी ए डॉग, ए पिग, ए रिट, ए रेट, ए स्ट्रिंकिंग वॉर्म, देन टू बी ए मैन हुम नो वन ट्रस्ट, अवश्य अवशसनीय होने से कुत्ता, चूहा, दुर्गंधिक कृमि कीट होना अच्छा है। एकाएक शेखर उठ खड़ा हुआ और दीवार से अंग्रेजी में बोला, कोष्ठ में जाने क्यों वह घृणा का भाव और किसी भाषा में व्यक्त ही कर नहीं सकता। आई हेट हर। फिर जब कभी कोई नहीं उठा था, उसने कपड़े पहने और अपने कमरे की खिड़की के रास्ते बाहर कूदकर किसी और को चल पड़ा।